मैंने ख्वाब देखा है। ख्वाब में सेब का एक दरख्त है। उस ख्वाब के बाद मैंने तुमसे बात करने का फैसला किया। आज रात आऊंगा, हम लोग वही हमेशा की जगह जाएंगे जहां बगैर किसी तकल्लुफ के बात कर सकें। मैं एक बार ही सही अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं।
सलामुअलैकुम।
वालेकुम सलाम। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
सलामुअलैकुम। मेरा कसूर नहीं, मैंने इनसे कहा कि अम्मी को अचानक वाले मेहमान पसंद नहीं, लेकिन फिर भी आ गए।
ये क्या बात हुई, अंदर आओ।
बहुत झूठा आदमी है भाई, तुमने तो टेलीफोन पर कहा था कि हाजी साहिबा अकेली उनके पास चलते हैं।
मैंने ये कहा था कि हाजिया साहिबा के लिए उनके पास चलते हैं। मैंने ये कहा था कि हाजिया साहिबा के लिए मैं उनके पास जा रहा हूँ, उनके पास जाकर नखरे करूँ, अम्मी मेरे नाज उठाएं, लेकिन अचानक आप लोग आदम के।
दरअसल मेरा कसूर है, मैंने बड़ा मजेदार रात का खाना बनाया था, मैंने सोचा हम साथ में खाते हैं।
तुम क्या कह रही हो बेटी, मेहमान हबीब खुदा होता है। आओ आओ अंदर आओ।
जहमत दी मैंने आपको।
बकवास आदमी।
खुश आमदी।
कुछ जल रहा है क्या?
नहीं बेटी, मेरा ध्यान बट गया, खाना जल गया। मैंने तुम लोग को डिस्टर्ब किया।
अरे नहीं, ये कैसी बात कर रही है। असल बात तो ये कि खुश रहें और आपके साथ रहें तो बहुत अच्छा।
समीरा जान, साथ रहने को गनीमत जानो। ये बात समझ लो कि खुदा ने मुझ पर रहम किया कि रात में भूख की नहीं सो रही। तुमने बहुत ज्यादा सहमत की है। शुक्रिया तुम्हारा। इस्माइल बेटा, इन दिनों तुम दुकान पर गए थे?
नासिर साहब तो है ना।
लेकिन तुम हो दुकानदार के बेटे,
क्या कुछ हुआ है क्या?
नहीं भाई नहीं, क्या होना था। ये सारी चीजें अमानत है, ये अमानत लोगों ने हमारे हाथ में दी है और हमें उन लोगों तक सही सलामत पहुंचाना है। ऐसा कोई काम क्यों किया जाए कि जिसके बाद लोगों की बातें सुननी पड़े।
आप बहुत कुंचलक बातें कर रही हैं अम्मी।
आप कल दुकान पे जाएं, हिसाब किताब देख कर आए, उसके बाद हम इस सिलसिले में बात करेंगे।
आप मोनिस फूफी को तो जानती है ना, कदम रखूंगा तो शोर शराबा शुरू कर देंगे। आप कह रहे हैं तो मैं वहां चला जाऊंगा।
तुम्हें अपने बाबा को जवाब देना है, नमूनिस खातून को।
जी। जी बिल्कुल।
सलाम अलैकुम। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ?
जी बैठे प्लीज। कल आपके बेटे ने बात की थी, मैंने भी सुपरवाइजर से बात की है, उन्होंने इजाजत दी है, आप अपने मेहमानों को ला सकती हैं। सिर्फ ये गुजारिश है कि दूसरे बीमारों का जरा ख्याल रखिएगा प्लीज।
शुक्रिया बेटी, खुदा तुम्हें अच्छा रखे। क्या हाल है तुम्हारा?
جی ہاں ٹھیک ہوں. البتہ بلا وجہ انسان کا امید لگائے رکھنا مجھے بالکل پسند نہیں.
امید رکھنا کسی وجہ کا محتاج نہیں ہوتا بیٹی, انسان امید ہی سے زندہ ہے.
شاید میری ہی قسمت خراب ہے کہ مجھے امید کی کرن نظر نہیں آتی, میں ہمیشہ مایوس رہتی ہوں. تنہا رہنا اور اپنوں سے جدا ہو جانا, مجھے یہ حق ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر میں بھی مایوس ہو جاؤں, اسی لیے امید نہیں لگاتی ہوں.
اس طرح تو شاید میری قسمت اچھی تھی کہ میں نے جس چیز کی بھی امید کی تھی وہ مجھے مل گئی. اور اس وقت بھی اس بات کی امید کہ مرتضیٰ ہوش میں آ جائیں گے میرے ہاتھوں اور پیروں کی قوت بنی ہوئی ہے.
میری مشکل یہی ہے, اگر خدا نہ خواستہ
اگر نہیں ہوا تو یہ امید ہے کہ میں ان سے ایک اور دنیا میں ملاقات کر لوں گی.
کیسے معلوم؟
بہرحال میرا فرض ہے کہ میں صبر و تحمل سے کام لوں.
اگر آپ اپنے شوہر کی جگہ ہوتی تو کیا ہوتا, کیا وہ بھی یہی کام کرتے؟
ہاں لیکن اپنے طریقے سے. شاید میری طرح وہ ہر روز میرے سرحانے نہ آتے, لیکن اگر ضرورت پڑتی تو وہ پہلے انسان ہوتے جو مجھے دیکھنے آتے.
میں 3 برسوں سے اس وارڈ میں کام کر رہی ہوں, اس سے پہلے بھی دوسرے اسپتالوں میں کام کر چکی ہوں. میں نے صرف ایک ہی قسم کے مرد دیکھے ہیں, مرد جو بہت جلدی نا امید ہو جاتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے خدا حافظ کہہ دیتے ہیں.
دیکھو عورت اور مرد میں بنیادی فرق ہوتا ہے. مجھے عورت خلق کیا گیا ہے تو میں اپنے جذبات کو مرد کی طرح کیسے بیان کروں, یہ غلط ہے. اس کے علاوہ صرف مرد ہی جلد نہیں تھکتے.
اس 1 مہینے میں آپ نے اپنے شوہر کو زندہ رکھنے کی بہت کوشش کی, امید ہے کہ آپ کامیاب ہوں گی.
ہمارا اور تمہارا زندہ رہنا سب خدا کے ہاتھ میں. میں نے تو صرف کوشش کی ہے کہ مرتضیٰ کے ساتھ زندگی کے کچھ دن اور گزار لوں.
اچھا میں چلتی ہوں.
کل آپ 60 سال کے ہو جائیں گے مرتضیٰ صاحب. خدا ہم لوگوں کے سر پر آپ کا سایہ قائم رکھے. میں نے بڑی مشکل سے وارڈ کی ہیڈ نرس کو منا لیا ہے کہ آپ کے بچے آپ کے پاس آ سکے. ایک بات, ہاں ایک بات آپ کے کان میں کہنا چاہتی ہوں, اسماعیل کے بارے میں. لگتا ہے ہمیں اچھی خبر ملنے والی ہے.
وسوق صاحبہ, میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا, آپ نے اجازت دے کر امی کو خوش کر دیا.
کوئی بات نہیں.
جبرائیل و یا رب و من تحت کسا و قال از بجل خوم بیت النبوت و من رسالت و فاقت و ابو خوم و فقال جبرائیل یا رب تکس لی ان احبت الارز لکم محو ساد سال و خال
امید ایسا معجزہ ہے جو ہر روز دیکھا جا سکتا ہے. امید انسانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتی, عادل ہے. اس کی کرن اپنے ساتھ ایمان اور جوش لاتی ہے. بجھے ہوئے دلوں کے لیے ڈھارس ہے امید. کیا آپ جانتے ہیں کہ معجزے کی امید خود معجزے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ जब हम खुदा की बारगाह में राज व नियाज करते हैं तो हमें मोजज़े की उम्मीद दिखाई देने लगती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर उम्मीद ना होती तो कोई माँ बच्चे को दूध ना पिलाती और ना कोई किसान दरख्त लगाता। लिहाजा हमें उम्मीद रखनी चाहिए।
हाँ बेटा इस्माइल, सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम अम्मी, आप ठीक हैं? एक जहमत देनी थी आपको।
कहो बेटा, जहमत की कौन सी बात है?
मुझे वकीली साहब का फोन नंबर चाहिए। देखिए बाबा का मोबाइल ऑन होता है।
होल्ड रखो बेटा, होल्ड रखो। सुनो इस्माइल बेटा, इसे मैं चार्ज पे लगा के देखती हूँ ऑन होता है या नहीं। होल्ड करो। ऑन नहीं हो रहा है, ये टूट गया है लगता है।
ऑन होता तो ताज्जुब की बात थी। कोई बात नहीं, मैं मकसूदी साहब को फोन करता हूँ, उनसे ले लूंगा। बहरहाल मोबाइल ठीक करने के लिए देना होगा।
फोन नंबरों की जरूरत होगी हमें।
हाँ हाँ, जब उन्हें होश आ जाएगा तो हमें तमाम नंबरों की जरूरत होगी। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज।
हाजी साहब माफ करेंगी, आप इसकी मरम्मत में जितने पैसे लगाएंगे उतने में नया मोबाइल खरीद सकती हैं। ये देखिए ये मॉडल है, आपको नया मॉडल चाहिए तो वो भी ला दूंगा आपको।
जानती हूँ बेटा, ये रोजे पेदर शोहर के लिए बहुत अहमियत है इसकी, इसको आप ठीक करते ममनून होंगे।
मैं वादा तो नहीं करता, क्या पता ठीक हो या ना हो, बहुत ज्यादा खराब हो गया।
आप अपनी कोशिश करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हेलो इस्माइल बेटा, क्या बात?
मैं आपको थोड़ी देर में फोन करूंगा अम्मी।
मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, दुकान बंद हो चुकी
कोई
है।
कोई बात नहीं।
हाँ बहुत माफी
चाहता हूँ। ए बच्चे, मैं तुम्हें एक नसीहत करती हूँ, कुछ सब्र करो, सब्र रखो, उनकी मशीनें हटा दें, उन पर फातिहा पढ़ दिया जाए तो फिर आके 800 मीरास का दावा करना। बेचारा मेरा भाई।
भाई बस भी करो मुनीस, ये बेचारा तो कुछ नहीं कह रहा है।
आपने सुना नहीं, अगरचे कि तुम इनकी बातों के आदी हो गए हो, मेरी बच्ची को मार डाला और अब इंतजार कर रहे हैं कि मेरा भाई अल्लाह को प्यारा हो जाए ताकि इसका माल बांट कर खाएं।
मुनिस फूफी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ।
एक नजर अपने शनाख्ती कार्ड पे डालो, फिर रिश्तेदार होने का दावा करना।
मुनिस,
हम और तुम में कोई रिश्तेदारी नहीं। तुम मलिहा के दूर के रिश्ते के यतीम बच्चे थे, मेरे भाई ने तुम्हें पाला है, बस यही। मैं भी धोखे में आ गई और तुम्हें अपनी फूल सी बेटी दे दी।
मैं अपने वालिद के माल से कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं। अगर आप चाहें तो मैं अभी लिखकर दस्तखत करने को तैयार हूं। गुलनाज मेरी बीवी थी, मैं उसे बहुत चाहता था, अब भी चाहता हूं।
उसे चाहते थे तभी उसे मार डाले? मुर्तजा को भी चाहते हो? हम ऐसा क्या करेंगे तुम हमें ना चाहो?
मोनिस, तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हो?
जरा सा पानी लेके।
क्या हुआ? ये लो, ये लो। तुम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो?
मेरी प्यारी बेटी वहां कब्र में सो रही है, तुम्हारी बेटी।
ये लीजिए पानी पी लीजिए।
इस हालत में कहां जा रही हो? कहां जा रही हो भाई? कहां जा रही हो? ठहरो, साथ में चलते हैं। कहां?
खुदा हाफिज़।
अरे भाई कहां जा रहे हो?
मैं पहले भी यहां बिल्कुल नहीं आना चाहता था, इन बातों के बाद भी मेरा रुकना बिल्कुल सही नहीं।
किसके लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए या हाजी मुर्तजा के लिए? भाई हाजी साहब उससे कहीं ज्यादा तुम्हें चाहते हैं। आओ बैठो, जरा संभलो, देखते हैं क्या किया जा सकता है। आओ बैठो बेटा।
रोजाना हजार बार कहता हूं काश गुलनाज जिंदा होती और मैं मर जाता। मैं हजार बार ये आरजू करता हूं।
ऐसी बातें ना करो बेटा।
10, 20, 30, 40, 50
ये 60
हाँ लगता है खत्म करो।
नहीं बोलो, ये हॉस्पिटल ही
है। अम्मी यहाँ पर आपका बिगड़ल बेटा कब आएगा?
कैंडल यहाँ भी पता नहीं बेटा कहाँ रह गया।
अगर आ गया तो उसको आने नहीं देना, जो भी किया है हम ही लोग ने तो किया है, नहीं तो आता नहीं।
तुम में से कोई फोन करके देखोगे कहाँ।
अच्छा जाने दीजिए मामा, मत
सभी जानते हैं उसके बारे में।
हाँ सब जानते हैं कि कैसे काम पकड़ रहा हूँ।
अरे भाई किसी के पास माचिस हो या लाइटर हो या पत्थर अत्थर हो जलाने के लिए, क्षमा ये लीजिए। अरे आपके दामाद की जेब में लाइटर निकला है अम्मी?
मेरा अपना नहीं है अम्मी।
अरे भाई वो मेरा है, कैंडल्स को मत बुझाइएगा। हाँ मैं अभी आ रही हूँ बात करके।
ठीक है बेटा ठीक है,
जरूर भूल गया होगा कि आना है।
अच्छा जब तक फर्राज नहीं आता बाबा की जगह तुम दुआ करो।
मुझे नहीं पता तुम्हारे बाबा क्या सोच रहे हैं।
तो कोई बात नहीं, आप खुद ही कुछ मांग लीजिए अपने लिए।
अम्मी दिल में सही नहीं है, ऊंची आवाज से कहें।
जितना भी फोन कर रही हूँ उठा नहीं रहा वो।
अरे भाई किनारे हटिए, केक आ गया है, बाबा का केक आ गया है।
माफ करना बच्चों, माफ करना।
कुछ मांगना भूल गई मामा।
मेरी आरजू क्या हो सकती है तुम्हारे बाप की सलामती के अलावा?
क्या उनके पास नहीं जा सकते हम लोग?
नहीं बेटा,
काश वो जान जाते कि हम कितना परेशान हैं।
अरे क्षमा पिघल रही है, अरे क्षमा पिघल रही है भाई। हाँ। जल्दी करो
क्षमा पिघल रही है, जल्दी से
जल्दी।
नो टी
प्लीज 5 मिनट से जरा टाइम ना लगे।
बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा।
ये लीजिए डॉक्टर साहब।
बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, थैंक यू।
उनके सरहाने जश्न मना रहे हो? उनके वेंटिलेटर का तार खींच दो, सबको चैन आ जाएगा।
ये क्या बात कर रही है मोनिस साहिबा?
मैं क्या बात कर रही हूँ? आईसीयू में आके इंसान कोई जश्न मनाता है? किस बात की मिठाई खा रहे हैं? मेरे भाई की मौत की?
मोनिस बस करो, ये बच्चे अजनबी नहीं है, ये हाजी साहब के बच्चे हैं। आज हाजी साहब की सालगिरह है, इस वजह से यहाँ आए।
बेचारा मेरा भाई, तुमने एक बटालियन उसकी सरपरस्ती में दे दिया लेकिन खुद कुछ नहीं कर पाई। डरो नहीं, कहो।
मुनिस तुम्हारी बातें सही नहीं।
मैं जानती हूँ आप सही कह रही हैं, सही कर रही हैं मौलिम साहिबा। उस्ताद अखलाक मेरे सामने बनो मत, मैं तो जानती हूँ ना तुम्हारी सब चीजें बनावटी हैं, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारे दावे, तुम्हारे चाहने के दावे। चलो चलो जाओ, उठाओ अपनी बसात को। तुम्हारी मजलूम नमाई भी दिखावे की है।
नादाफ साहिबा, यह अस्पताल है, कोई घरेलू लड़ाई की जगह नहीं।
कैसे घरेलू जश्न मनाया जा सकता है? ये जो फौज देख रही है आपके बीमार को डिस्टर्ब नहीं कर रही?
जी नहीं, मैंने खुद उनको इजाजत दी है, क्योंकि इस काम से आपके भाई की तबीयत पर मुस्बत असर पड़ेगा।
मतलब ये केक और मिठाइयाँ मेरे भाई को कोमा से निकाल लाएंगी?
यकीनी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैंने देखा है कि उनकी उंगलियों में जुम्बिश आई है।
बहुत शुक्रिया, एक महीने के बाद आपने देखा कि वो अपनी उंगलियां हिला सकते हैं। सिस्टर, अगर मेरा भाई यहाँ से ठीक होके ना उठा तो आप सबके खिलाफ मुकदमा कर दूंगी। क्या हम लोगों ने तय नहीं किया था कि अपने अपने दिन आएंगे हैं? मैंने उसी वक्त कह नहीं दिया था कि आंधी आई या तूफान मैं अपने भाई की तीमारदारी के लिए आऊंगी? मेरा प्रोग्राम नहीं बदलेगा, जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा और तुम्हारे साहबजादे का मुंह नहीं देखना चाहती। अब जब तुम्हारी बारी नहीं है तो तुमने यहां फौज क्यों बुला रखी है? क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी?
आज एक खास दिन है मोनिस, उनकी सालगिरह पे हम साथ रहना चाहते थे। अगली बार मैं अपनी बारी,
मुझे तुम्हारी बारी नहीं चाहिए। इसी वक्त अपना ये जश्न खत्म करो, मैं अपने भाई के साथ अकेली रहना चाहती हूँ। वो बात तो नहीं कर सकते, मैं सिर्फ उनकी सांस की आवाज सुनती रहूंगी।
माफ करना
सब कुछ जमा, मामा कोई बात नहीं,
ठीक है सब। ठीक ही करके जाएं, हाजी साहब को देख कर आएं। ये हाजी साहब के लिए मेरा तोहफा है, जाएं जाएं जल्दी करें प्लीज, जाएं थोड़ा जल्दी प्लीज।
ठीक है ठीक है ठीक है, जा रहे हैं, चलो चलो जल्दी करें, यहाँ से उठा ये सब निकालो, सारे पहले सब, चलो जल्दी करो, चलो जल्दी जल्दी खत्म करो।
ये मॉडल बच्चों को बहुत पसंद आता है।
बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आएंगे।
ये लीजिए साहब, मुबारक हो इंशाल्लाह।
बहुत शुक्रिया,
बहुत बहुत मुबारक हो,
खुदा हाफिज़।
सब ठीक है ना?
तय था कि कंप्यूटर सिस्टम के मुताबिक काम करेंगे।
क्यों भाई, मेरा सिस्टम यही है, पेंसिल और रजिस्टर।
आप करीमी साहिबा को जानते हैं?
करीमी?
नाहिद करीमी?
नहीं भाई, क्यों जानना चाहिए, कौन है?
उनका नाम बाबा के रजिस्टरों में बहुत ज्यादा है।
तो क्या मकरूज है या फिर कर्जा दिया है?
उनके अकाउंट में पैसा डाला गया है, काफी ज्यादा। आपको याद आ जाए तो मुझे फोन कर दें।
बहुत अच्छा, ठीक।
क्या हुआ फरनास? मैं मसरूफ था, मैंने सुना नहीं, क्या हुआ है?
Oh,
मोनिस, मैं तुमसे एक इल्तिजा करने आई हूं।
उससे क्या चाहती हो कि जिसके पास देने को कुछ नहीं है?
मेहरबानी चाहिए मेरे लिए नहीं, और ना ही इस्माइल के लिए, तुम्हारे भाई के लिए। वो इस हालत में सब कुछ समझ रहे हैं, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। चाहो तो उनके डॉक्टर से पूछ लो। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई की कसम देती हूं, कम अज कम जब तक होश में नहीं आ जाते तब तक।
मैं कुछ कहना चाहती हूं।
कहो।
तुमने कभी सोचा है कि मेरा भाई जो इस वक्त कोमा में है, वो इस हालत के हकदार थे?
ये तो किसी का हक नहीं है, लेकिन अपनी किस्मत से कोई फरार नहीं कर सकता, यानी मुर्तजा का एक्सीडेंट।
हाँ, भागा नहीं जा सकता, लेकिन अगर मेरे भाई के भी अपने बच्चे होते और वो उनसे उम्मीद लगाए रहते, तो शायद उसकी किस्मत उन्हें काशान हाईवे तक ना ले जाती और एक्सीडेंट भी नहीं होता।
मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रही हूँ। तुम आज तो मेरी और मुर्तजा की जिंदगी से आगाह नहीं हुई हो। इन मसाइल का आपस में क्या ताल्लुक है?
तुम जितनी होशियार और ज़हीन बनती हो, शायद हो नहीं और नहीं समझती, या सब समझती हो और ना समझने की एक्टिंग करती हो। तुम अपनी मसलहत खुद जानती हो।
कह रही थी कि किसी के बारे में जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में नासिर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं आज दुकान पे गया था, वो बड़ी खंदा पेशानी से मुझसे पेश आए। जब वो घर जा रहे थे तो उन्होंने दुकान की चाबियां मुझे देना चाहीं, लेकिन मैंने चाबियां नहीं ली। मैंने उनसे कहा ये मुनासिब नहीं। बहरहाल वो बुजुर्ग हैं और हमें उनका एहतराम करना चाहिए। मोनिस फूफी भी सुबह वहां थी। आप तो जानती हैं वो कैसी बातें करती हैं। अम्मी आप एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगी। आइए कुछ आराम करते हैं, उसके बाद वापस चलेंगे।
मैं थोड़ी देर चहलकदमी करना चाहती हूँ।
अच्छा तो मैं भी आता हूँ।
तुम अपना काम करो।
मुझे कोई काम नहीं है ना, मैं भी चलता हूँ ना।
इस्माइल, मुझे अकेला छोड़ दो बेटा।
अम्मी सबको फोन करते हैं, सब लोग आ जाएंगे, साथ रहेंगे।
नहीं बेटा, ये सब करने की जरूरत नहीं है।
आप अब भी उनकी बातों से परेशान हैं। उनकी तमाम बातों का निशाना मैं हूँ, दिल पर आप क्यों ले लेती हैं? यानी मुझे उतरना होगा।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
Thank you.
जी
मुनिस।
देखो मैं जानती हूं कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन पता नहीं कोई चीज तुम्हें रोक रही है कि तुम मुझसे कुछ नहीं कह रही हो।
अब ऐसा क्या हुआ है कि इतने अरसे बाद मेरी बातों पे तवज्जो दे रही हो? अफसोस की गलती का नतीजा गलती है, कोई बात नहीं है।
देखो
अगर तुम मुर्तजा साहब के एक्सीडेंट की वजह से कुछ नहीं बता रही हो तो ये ना करो, मुझे बता दो अगर कोई बात है। मैं उसे सुनने की ताकत रखती हूँ, बच्ची तो नहीं हूँ।
मैं ना सिर्फ तुम्हारे साथ बल्कि उसकी सारी दुनिया के साथ कोई वास्ता नहीं। तहफ्फुज़ात उस वक्त होते हैं जब ये सोचती हो कि तुम्हें उसका तावान देना है। मैंने उसका तावान दे दिया है। मेरी बेटी बेहिश्त ज़हरा में सो रही है और एक अस्पताल में कोमा में है। भाईजान, अगर आपने मुझे गुलनास की रूह की कसम न दी होती ना तो मैं
जनाब नहीं है यहाँ पर।
कहा ना नहीं, हमें ऐसा नहीं करना था बहराम।
औलाद नेमत होती है मेरी बहनों, लेकिन खुदा से दुआ है कि हमें औलाद सालेह अता करे। मेरा हमेशा दिल चाहता था कि मेरी एक ऐसी बेटी होती।
रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो?
बहराम के घर से। तो जवाब दो ना।
मैं किसी से अपना दुखड़ा बयान करना चाहती हूँ, बस बातें कहनी आसान नहीं है, मुश्किल है।
इकबाली साहब का कहना था कि 50 साल से इस घर से कोई आवाज बाहर नहीं निकली, अब उनकी रूह को किस कदर तकलीफ पहुँच रही होगी। आप सिर्फ मेरे लिए इंतजार कर सकते हैं बस।
अम्मी देखिए, मैं खुद चकरा गया हूँ, उनके बहुत ही अजीब गरीब सवाल थे।
खुदाया मैं उसे तेरे सुपुर्द करती हूँ और कुरान के साए में उसे रखना।
सर दो हमारे मसले हल हो गए, एक तो ये कि बाबा काशान हाईवे पे क्या कर रहे थे और दूसरे ये कि ये साहिबा कौन है।
हाजी साहब तमाम कामों में मुझसे मशवरा करते थे, लेकिन करज के घर के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया।